करते पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि हमारे मन में अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने का भाव उत्पन्न होता है और हम रोज मिल बैठकर अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। उस विचार के अनुरूप हम अपने जीवन को कितना अच्छा बना पाएंगे ये अगला कदम है, लेकिन पहला कदम तो यही है कि मैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए संकल्पित हूँ। और इतना ही नहीं, अच्छा जीवन कैसे बने इस बात पर मैं विचार भी करता हूँ। हम अपने जीवन को खुद झांक करके देखते हैं अपने भीतर, तो हमें सब कुछ कई बार एकदम ठीक लगता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है। तब ऐसी स्थिति में ये कैसे मालूम पड़े कि सचमुच हम जैसा जीवन जी रहे हैं वही ठीक है? उसके लिए जरूरी है कि दूसरे के संबंध से हम अपने जीवन को देखें कि वो कैसा है। इन रिलेशन टू अदर्स, दूसरे से मेरा जिस तरह का संबंध है उससे मालूम पड़ता है कि मैं कैसा हूं। दूसरे की दृष्टि से मैं अपने आप को देखूं तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं कैसा हूं। अब दूसरे की दृष्टि से तो मैं अपने को नहीं देख सकता, तो मैं इतना ही कर सकता हूं कि मैं अपने संबंधों को जरा ठीक से एनालिसिस करूं और देखूं कि मैंने इस संसार में किस किस से किस तरह के संबंध बनाए हैं। मैं वस्तु, व्यक्ति और घटना से, तीनों से अपने संबंध निर्मित करता हूं। उसमें विशेष रूप से वस्तु और व्यक्ति के बीच मेरे संबंध अधिक होते हैं। घटना तो थोड़ी देर को घटित होती है और मैं उस घटना से क्षण भर को जुड़ता हूं और फिर भूल जाता हूं, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा संपर्क वस्तु और व्यक्ति से होता है। उससे मैं संबंध निर्मित करके अपना जीवन जीता हूं। वस्तु और व्यक्ति में भी मैं गौर से देखूं तो मेरे संबंध जितने अधिक वस्तु से हैं उतने व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि वस्तु से संबंध स्थापित करने में सुविधा है। किसी भी चीज को हम उस पर अपना अधिकार जमा करके उसे अपना कह सकते हैं। उस चीज का हम जैसा उपयोग करना चाहें वैसा कर सकते हैं। उस चीज को जिस दिन हम रिप्लेस करना चाहें उस दिन हम उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये मेरी कार है, ये मेरी तिजोरी है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये जो मेरा पजेशन है, ये जो मेरा अधिकार है वो बहुत आसानी से मैं निर्मित कर लेता हूं। हमें इसके लिए किसी चीज से पूछना नहीं पड़ता है कि वो चीज मेरी होना चाहती है कि नहीं होना चाहती। और इतना ही नहीं, उस चीज को मैं जहां रख देता हूं वो बिल्कुल एक आज्ञाकारी, अपने आज्ञाकारी पने को निर्वाह करती हुई वहीं रखी मिलती है। मैं मीलों लंबी यात्रा करके लौटूं तो मेरी तिजोरी में मुझे वहीं मिलती है, लेकिन मैं अपने बेटे को कहीं बिठा के जाऊं और 10 मिनट बाद भी लौटूं तो वो वहां बैठा नहीं मिलेगा, वो कहीं और घूमता फिरेगा। तो मुझे उससे संबंध बनाने में जरा दिक्कत होती, चीज से संबंध बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और चीज के साथ मजा यह है कि मेरे पॉकेट में कल तक 10 रुपए पड़े थे जिन्हें मैं अपना कहता था, आज मैं चाहूं तो किसी और को दे दूं तो मुझे उस 10 रुपए के नोट से ये नहीं पूछना पड़ता कि किसी और के साथ जाओगे या मेरे पास ही रहोगे, नहीं पूछना पड़ता, मैं दे देता हूं। मेरे घर में कार में लेके आया था और मैं एक नया मॉडल देख के आया हूं, तो मैं चाहूं तो इस कार को चौराहे पे खड़े करके नीलाम कर सकता हूं। ये कार मेरे से मर्सी अपील नहीं कर सकती, दया की भीख नहीं मांग सकती, लोगों से ये जाके नहीं कह सकती कि मैंने वर्षों इनका साथ निभाया और आज मेरी जगह पर किसी और को लाके खड़ा कर रहा है। इसलिए इतना आसान है हमारा चीजों से संबंध बनाना, और आज हम देखते हैं कि वस्तु से संबंध व्यक्ति के सबसे ज्यादा है। एक कमरे में एक व्यक्ति और हजारों चीजें रह सकती हैं, लेकिन दो व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। ये इतनी आसान सी प्रक्रिया हमने अपना ली है, और जड़ वस्तुओं से संबंध बनाने वाले की जड़ता कितनी होगी ये बहुत स्पष्ट दिखने में आ रहा है। और इसीलिए बौद्ध दर्शन में लिखा है कि जितना व्यक्ति जड़ पदार्थों से ममत्व रखता है उतनी उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है, और जैन दर्शन में उसी को परिग्रह कहते हैं, क्योंकि ये इतनी गहरी आसक्ति है कि जिसको हम सहसा छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि व्यक्ति अपने हीरे जवाहरात को अपने शरीर से बांध करके और मरा, इतनी आसक्ति, इतना व्यामोह इन चीजों से हमारा हो जाता है। तो ये देखें, वैसे तो मुझे अपना मोह नहीं दिखाई पड़ता, वैसे तो मुझे अपनी तृष्णा नहीं दिखाई पड़ती, वैसे तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं बहुत निष्प्रह हूं, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं देखूं इन चीजों से मैंने कैसे संबंध बना रखे हैं, उससे मालूम पड़ेगा कि मेरी चेतना अभी किस ऊंचाई पर है, पहुंची है, या कि अभी अपने धरातल पर ही खड़ी हुई है। व्यक्ति से संबंध बनाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसके मन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो व्यक्ति से भी हमने संबंध बनाए तो हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के संबंध बनाए हैं। तीन तरह के संबंध हम चेतन आत्माओं से बनाते हैं। जड़ वस्तुओं से तो एक ही संबंध होता है, उपयोगिता का संबंध होता है, वे मेरे उपयोग में आती हैं, और उनसे मेरा स्टेटस मैं तय करता हूं। जिसके पास जितनी कीमती चीजें हैं वो उतना कीमती हो जाता है, जिसके पास जितनी ज्यादा चीजें हैं वो उतना बड़ा हो जाता है। तो मैं अपने मैं को इन्हीं चीजों के द्वारा बड़ा कर लेता हूं, लेकिन व्यक्ति के साथ मेरा उपयोगिता का संबंध तो है ही, मेरे और भी संबंध हैं, घृणा का और द्वेष का भी संबंध है, प्रेम दया और करुणा का भी संबंध है, मेरे कुछ थोड़े से संबंध श्रद्धा और भक्ति के भी हैं। अब ये देखना है कि इनका रेशियो क्या है, उससे मालूम पड़ जाएगा कि मैं कैसा हूं। तो मैंने जिस ऑर्डर में कहा है उसी ऑर्डर में रेशियो बन जाएगा। सबसे ज्यादा मेरे संबंध अगर सुबह से शाम तक देखूं तो घृणा और देश के हैं। बहुत गौर से देखना, मैं कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं। मान लीजिएगा हम सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे। मैं सुबह से शाम तक ये देखता हूं कि मेरे संबंध अधिकतम घृणा और देश के ही संबंध हैं। जैसे कि कुनिक का अपने पिता से था, जैसा कि कंस का अपने पिता से था, क्या ऐसे ही संबंध हमारे तो नहीं है? बहुत अधिक मात्रा में देखने में तो यही आता है कि हमारे संबंध इसी तरह के हैं। इतने जल्दी हमारे मन में दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना आती है, इतनी जल्दी हमें दूसरे के गुण देख करके ईर्ष्या का भाव आता है। ईर्ष्या भी एक द्वेष का ही रूप है और कुछ नहीं। मेरी भावना पढ़ते समय मैं कहता जरूर हूं कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखूं, लेकिन मेरा सुबह से शाम तक पूरा जीवन दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाने के कारण ईर्ष्या से ही भरा रहता है। इवन मैं जब पूजा करता हूं तब भी मेरे मन में यह भाव आ जाता है, यहां तक कि मैं जब धर्म सभा में बैठा होता हूं तब भी मैं दूसरे किसी व्यक्ति को अधिक सम्मान पाते देख करके और बहुत मुश्किल में पड़ जाता हूं। ये मेरी चेतना का मुझे एनालिसिस करने पर ऐसा लगने लगता है कि मैं तो बहुत पतित हो गया। अगर ये विचार हमारे भीतर आने लगे तो समझिएगा कि हां, अब मेरी चेतना समृद्ध होने वाली है। वरना 99% लोगों को यह चीज समझ में ही नहीं आती है कि दूसरे से मेरे संबंध जो मैंने ईर्ष्या और द्वेष और घृणा के बनाए हैं, उनसे मेरी ही चेतना मलिन हुई है, दूसरे का कोई भी घाटा नहीं हुआ है। ये बहुत कम लोगों को यह चीज समझ में आती है। हमारा सौभाग्य कि हमें यह चीज समझ में आ रही है कि मुझे मेरे संबंध ऐसे नहीं बनाना है जिससे मेरी चेतना मलिन हो, क्योंकि सोसाइटी इज द प्रोजेक्शन ऑफ अवर सेल्फ। ये जो दिखाई पड़ने वाली समाज है वो मेरा अपना प्रोजेक्शन है और कुछ भी नहीं है। मेरे भीतर घृणा है तो मुझे सब दूर वैसे ही लोग दिखेंगे जो घृणास्पद है। मेरा द्वेष है तो मुझे कहीं गुणवत्ता दिखेगी नहीं। दुर्योधन महाराज अगर विश्व में ढूंढने निकले कोई भला आदमी तो लौट के आएंगे और कहेंगे कोई भला नहीं है, लेकिन अगर दुनिया को देखने के लिए युधिष्ठिर महाराज को भेजा जाए कि एकाध बुरा ढूंढ के लाओ तो वो कहेंगे साहब क्षमा करो, एक भी नहीं मिला, कोई बुरा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज की आंख में संसार में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वे अपने आप में बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्हें कोई बुरा नहीं दिखता। और दुर्योधन महाराज को कोई अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, उनको सब बुरे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उनके भीतर इतना कुछ कचरा है, इतनी कुछ बुराइयां हैं कि किसी और की अच्छाई दिखती ही नहीं है। ये अपना एनालिसिस खुद करना पड़ेगा कि जब जब मैं दूसरे की बुराई देखता हूं तो वो मेरा ही प्रोजेक्शन है, वो मेरे भीतर पड़ी हुई विकृति है। और जब जब मुझे कहीं किसी के भीतर कोई अच्छाई दिखती है तो वो अच्छाई वहां नहीं है, वो मेरे भीतर है। किसी को अच्छा कहने वाला, भले ही दूसरा अच्छा हो ना हो, वो स्वयं तो अच्छा हो ही जाता है। और किसी और को बुरा कहने वाला, दूसरा बुरा हो या ना हो, स्वयं तो बुरा हो ही जाता है। ये बहुत सीधा सा गणित है, लेकिन हमें अब स्वयं अपने जीवन के बारे में विचार करना चाहिए कि हमने जो संबंध निर्मित किए हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं, उनका रेशियो घृणा द्वेष ईर्ष्या और विद्वेष का तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उसमें कमी लाऊं, और कमी लाने के लिए मुझे कोई बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना है, मुझे उन संबंधों को थोड़ा सा चेंज कर देना है। सुकरात से जब ये कहा गया, दार्शनिक थे, जब यह कहा गया कि एक व्यक्ति है जो तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है, और वो सोचता है कि मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक सुकरात से अपना बदला नहीं ले लूंगा, हो गई होगी तुमसे कोई गलती जिसको कि उसने गांठ बांध ली अपने भीतर, वो ऐसा कहता फिरता है। तो सुकरात ने कहा कि अब मैं भी तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि उसे अपना मित्र ना बना लूं। ये चेतना की ऊंचाई से ही निकल सकती है बात, वरना एक कॉमन पर्सन थिंक अबाउट द पर्सन, ए मीडियम पर्सन थिंक अबाउट द इवेंट्स, बहुत मुश्किल है इससे ऊपर उठना। ए आइडियल पर्सन थिंक अबाउट आइडियाज एंड आइडियल्स, एक कॉमन पर्सन 99% लोगों के अंदर दूसरे के बारे में ही सोचने का क्रम चलता है, और दूसरे के बारे में भी भला सोचने का क्रम नहीं। एक कॉमन पर्सन थिंक अबाउट द पर्सन, यानी एक सामान्य व्यक्ति सिर्फ दूसरे की बुराइयों के बारे में सोच करके अपने जीवन को मलिन करता रहता है। मध्यम प्रकार के लोग घटनाएं घटित होने पर उनको एनालाइज करते रहते हैं, ये ठीक हुआ नहीं हुआ, देश में क्या चल रहा है, वो एक चाय की दुकान पर खड़े होकर एनालाइज करेंगे पूरी संसद में होने वाली कार्यवाही को, पूरे खेल का अगर कोई एनालिसिस करने वाला है तो पूरे खेल को एनालाइज करके बता देगा वो कि ये यहां पर ये फॉल्ट था और यहां ये ऐसा था। अपने जीवन के बारे में सोचने का वक्त नहीं है उसे। ये मीडियम पर्सन इवेंट्स पर घटित होने वाली सांसारिक घटनाओं को एनालाइज करता है। आइडियल पर्सन बहुत 1% होगा कोई जो आइडियाज और आइडियल्स के बारे में, किसी आदर्श के बारे में और अपने जीवन को अच्छा बनाने के बारे में सोचेगा। इसलिए हम देखें कि हम किस तरह का सोच रखते हैं, हमारा अपना दूसरे के बारे में किस तरह का सोच है, द्वेष का है, ईर्ष्या का है, किस तरह का है। अगर हम चाहें तो उसको परिवर्तित कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसे बदल सकते हैं। घृणा को प्रेम में बदलने की प्रक्रिया है, और घृणा को या कि शत्रुता को मित्रता में और मैत्री में बदलने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी हम अपना सकते हैं। चाहें तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि अब हमने अपने जीवन को परिवर्तित करना शुरू किया है। एक जगह और लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप इज द मिरर इन विच आई सी माई सेल्फ एज आई एम। संबंध और कुछ नहीं है, एक तरह का दर्पण है जिसमें कि मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं कैसा हूं उन संबंधों के माध्यम से, क्योंकि मेरे घृणा का संबंध मेरे भीतर की घृणा को मुझे दिखा देता है, मेरा दूसरे से प्रेम का संबंध मेरे भीतर के प्रेम को मुझे सामने दिखा देता है। वैसे मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किससे घृणा करता हूं, किससे प्रेम करता हूं, पर दूसरे व्यक्ति से पूछने पर मालूम पड़ता है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत बहुत प्यारा व्यक्ति है, या ये व्यक्ति बहुत विद्वेष करने वाला ईर्ष्यावान ईर्ष्यालु व्यक्ति है। प्रेम और दया और करुणा के संबंध भी हैं आज के समय में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम वैसा जीवन भी अपना बना सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। एक नौजवान बस में बैठा हुआ है, यात्रा कर रहा है, अचानक एक बुजुर्ग वार वृद्ध व्यक्ति बस में ऊपर चढ़ते हैं। वे देखते हैं कहीं स्थान हो बैठने का, लेकिन कहीं कोई स्थान उन्हें दिखाई नहीं पड़ता बैठने का। वे थके हारे वहीं हैंडल पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। तेज गाड़ी चलने से वे गिरते गिरते बसते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति को असुविधा में देख करके वो नौजवान अपने स्थान से खड़े होकर के उन्हें बैठने का स्थान देता है। तो बाकी जो लोग बैठे हुए हैं वो हंस पड़ते हैं, वो हम ही लोग हैं, ऐसा मत समझना कि वो कोई और लोग हैं, ये हम ही लोग हैं जो किसी की मदद करने वाले पर हंसते हैं। और क्या सोचते हैं, होगा कोई ना कोई स्वार्थ इनका, तब तो खड़े हो गया, कोई रिलेशन लगता होगा, या कि हो सकता है कि इस बुजुर्ग की कोई बेटी ब्याह के लायक हो और इस लड़के का उससे कोई अफेयर हो, इसलिए उसको जरा लाइन पे ला रहा है, इसलिए जगह दे रहा है, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत बैठिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे आचार्य भगवंत को ये सब चीजें नहीं मालूम थी, उन्हें सब कुछ मालूम था। उनकी उनकी आंख से ये संसार और इस संसार की अच्छाइयां बुराइयां कुछ भी नहीं छुपी हुई है। ये हमारा अपना सोच देखिएगा, इतना ही सोच पाएंगे, इससे ज्यादा ऊंचा तो उठ ही नहीं पाते हम, इतना ही सोच पाते हैं। उसने भी यही सोचा, सब लोग हंस पड़े उस पर, पर एक व्यक्ति नहीं हंसा। वो इस घटना को देख करके द्रवित हो गया, बहुत हर्षित हो गया। उस नवयुवक के कंधे पर हाथ रख के उसने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आज भी ये चीजें जीवित हैं, मैं ये देख करके कृतार्थ हुआ। तो उस नवयुवक ने मालूम क्या जवाब दिया कि इसमें मैंने कुछ अतिरिक्त नहीं किया, ये तो मेरा कर्तव्य है। अगर इस समय जबकि मैं ऊर्जावान हूं और युवक हूं, इस समय यदि ऐसे नहीं कार्य करूं तो इस वृद्धावस्था में करूंगा, जबकि मैं अशक्त हो चुकूंगा, जबकि मुझे खुद जरूरत होगी कि कोई मुझे सहारा दे। ये सोच अगर डेवलप हो जाए तो फिर देखिएगा कि हमारे संबंध क्षण भर में उस बुजुर्गवार से संबंध प्रेम का बन गया, और बाकी वे जो हंसे थे उन्होंने उस बुजुर्ग के माध्यम से एक देश का संबंध निर्मित कर दिया। वही उसी क्षण, भले ही क्षण भर को किया हो, लेकिन वो क्षण भर का संबंध हमारे चेतना की ऊंचाई और हमारे चेतना के पतित होने को दर्शा के चला गया। ये हमारे अपने संबंध जो हमने निर्मित किए हैं उन्हें हमें बहुत गौर से सुबह से शाम तक देखना चाहिए। लिखा तो यहां तक है कि जो कुलीन होते हैं, जिनको खानदानी कहते हैं, ये शब्द मैंने आचार्य श्री से 1992 में बहुत बड़ी धर्म सभा में और धीरे से हम लोगों की तरफ इशारा करके सुना था मैंने 1992 में, जबकि 5,00,000 जनता आचार्य महाराज के प्रवचन सुनने के लिए मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैंने ये भी देखा है 1976 में कि 50 लोगों में रविवार धर्म सभा हुई है, और एक स्थिति वो थी सबसे बड़ा पंच कल्याणक उस समय 1992 में हुआ था, जब जबलपुर में तब सिर्फ सिर ही सिर दिखाई पड़ते थे। उस बीच कोई एक सिंधिया परिवार के व्यक्ति आए थे और उन्होंने जिस तरह से सिर पर पगड़ी लगाकर आए थे तो उतार करके, और जिस तरह से आचार्य महाराज की विनय की थी, उससे उन्होंने धीरे से कहा था कि ये हैं खानदानी लोग, ये शब्द कहा था। उस समय ये बात मुझे लगी थी कि वास्तव में ये है हमारे अपने स्टेटस का सिंबल। आज हमारे स्टेटस का सिंबल कुछ और ही है। जितनी गर्दी करें, जितनी मस्ती करें, जितनी वल्गरिटी करें, उतने नवयुवक कहलाएंगे। ये स्टेटस है नवयुवक का। और एक वो नवयुवक है जो कि निरंतर मदद के लिए तैयार है और कह रहा है कि अभी तो समय है जो कि मैं कर सकूं। बड़े व्यक्ति का स्टेटस ये है कि वो अपने दरवाजे पर आए हुए छोटे व्यक्ति को दुत्कार के भगा दे, ये उसका स्टेटस है। वो उससे प्रेम से बात ना करे, वो उससे गले ना मिले, क्योंकि वो बड़ा है। ये क्राइटेरिया है अपना। इसका मतलब है कि हमने अपनी चेतना को पतित होने में ही महान मान लिया है, ये भ्रम हमारे भीतर पैदा हो गया। अब ऐसी स्थिति बताइएगा, बहुत मुश्किल है कि नहीं, कैसा लगने लगता है? मुझे तो सब कुछ बहुत थोड़ी देर के लिए बहुत बेमानी मालूम पड़ने लगता है। मैं ईमानदारी से बोलूं, सारे संबंध मुझे बेमानी लगने लगते हैं कई बार। जब ऐसे सोचता हूं, आपके साथ बैठ के सोच रहा हूं, अकेले भी कभी कभी सोचता हूं, क्या धरा हुआ है यहां पर? आपको नहीं लगता ऐसा? कभी कभी लगता तो होगा, कभी कभी ऐसी छटपटाहट तो होगी, होती होगी कि क्या कर लिया मैंने अपना, अपने अपने आप का। बनता तो बहुत होशियार हूं, बहुत समझदार हूं, लेकिन हूं तो बिल्कुल ही नहीं। ऐसा लगना चाहिए तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमारे जीवन में परिवर्तन हो और हम अपने आप को परिवर्तित करके बहुत बेहतर और बहुत अच्छा बना सके। मैं आपको एक छोटी सी वो घटना कहना चाह रहा हूं जो कि हमारे उस प्रेम के, करुणा और मैत्री के संबंध को प्रदर्शित करती है, जो हमारे भीतर ये भावना उत्पन्न करती कि हाँ सचमुच मुझे संबंध स्थापित करने चाहिए संसार में, तो बस इतने ही करना चाहिए, संसार से पार होने का संबंध भी मुझे स्थापित करना चाहिए, वो संबंध है श्रद्धा और भक्ति का। लेकिन संसार में अगर मैं रहूं तो घृणा और प्रेम में से संबंध प्रेम का बनाऊं, शत्रुता और मित्रता से मैं संबंध मित्रता का बनाऊं, मैं दया और करुणा का संबंध अधिक से अधिक लोगों से निर्मित करूं। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए गया, और रात 11 बजे वहां पहुंचा, देखा तो कहीं कोई ठहरने के लिए कमरा नहीं मिला किसी भी धर्मशाला में। उसने बाहर ही जो पर्ची थी, दालान थी, उसमें अपना सामान रख लिया। सोचा कि रात तो यहां कट जाएगी, लेकिन जीवन साथी ने थोड़ी सी अपनी तकलीफ बताई कि मैंने आज रास्ते में दूध न मिल पाने से अपनी दवाई नहीं खा पाई है, तो थोड़ा सा घबराहट हो रही है, हार्ट पेशेंट है, शायद बीपी बढ़ गया होगा, एग्जेशन भी हो गया है। अब थोड़ी घबराहट हुई कि सोच रहे थे कि इस दालान में रात निकल जाएगी, लेकिन दालान में तो निकल जाएगी पर तकलीफ में कैसे निकलेगी, इस तकलीफ को दूर करने के लिए मुझे कहीं से दूध का इंतजाम तो करना ही चाहिए। देखा तो कहीं कोई सुविधा नहीं थी दूध की, सब दुकानें बंद हो चुकी थीं, जो खुली थी उनके पास भी इतनी रात कौन आएगा ये सोच करके दूध खत्म ही हो गया था। किसी ने कहा कि यहां पर एक ही घर है, चले जाएं, शायद वहां आपको मदद मिल जाए, बाकी सब तो हम लोग दुकान वाले ही लोग यहां हैं। रोशनी देख करके उस घर के दरवाजे पर पहुंच करके बहुत हिचकिचाहट होती है कि इतनी रात गए, किसी भले आदमी को जगाना तो ठीक नहीं है, अपरिचित व्यक्ति, इतना ध्यान रहता है क्या अपने को, बहुत मुश्किल है, अपना काम अटकने पर तो कुछ ध्यान नहीं रहता, दूसरे का काम अगर अटक जाए तो उसको चार बातें सुनाने का ध्यान तो रहता है। कोई अगर रात 12 बजे अपने दरवाजे पर आ जाए तो क्या कहने का मन होता है कि भले आदमी हूं क्या, लगते तो नहीं हूं भले आदमी, 12 बजे रात को किसी को जगाना ठीक लगता है क्या, या कि हो सकता है कि दरवाजे नहीं खोलूं और ऊपर से ही कह दूं कि मैं अभी सोया हुआ हूं, अभी नहीं मिलूंगा, सुबह मिलूंगा। कितनी जल्दी मैंने उस व्यक्ति से देश का संबंध स्थापित कर लिया क्षण भर में। मैं उससे यह भी कह सकता था कि इतनी रात गए आप आए हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, यह तो बहुत कठिन है, इसके लिए तो चेतना की बहुत ऊंचाई चाहिए। अब उस दरवाजे पर बहुत हिम्मत करके उसने नॉक किया, खटखटाया, तो थोड़ी देर बाद किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। लालटेन लिए एक वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजा खोला, और खोलते ही साथ लालटेन की रोशनी में इस अपरिचित तीर्थयात्री को देख करके, अरे कहा नहीं तुमने कि तुम आने वाले हो, अरे पहले तो खबर दे देते मुझे, और इतनी रात हो गई और बहू कहां है, बा भाई बच्चों को लाए हो कि नहीं, इस बार अपरिचित व्यक्ति से कह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा ढीला होगा उसका, नहीं क्या लग रहा है आपको, यही लग रहा है, और क्या लग सकता है, इससे ज्यादा क्या लग सकता है कि ऐसा ही होगा, कोई ऐसा तो होता है क्या संसार में, ये कहां की घटना सुना रहा है महाराज जी, ठीक ठीक आदमी होगा ऐसा लग ही नहीं सकता कि जो एक अपरिचित व्यक्ति से इस तरह बोल रहा है, इसकी पहले सूचना देकर के आ जाते और बहू को लाए कि नहीं, बच्चे हैं कहां हैं। वो अपनी बात कुछ कह नहीं पाया कि मैं दूध ढूंढने के लिए निकला हूं कि कहीं एक पाव दूध मिल जाए, और इसके पहले ही बुजुर्ग बार इतना सब कह चुके और ये कह रहे हैं कि बाहर ही खड़े रहोगे क्या, अरे बैठो आओ अंदर बैठो। और अपने बेटे को आवाज देता है कि देखो तो इतना बड़ा हो गया है और मुझे बिना खबर दिए वो और आ गया और बता भी नहीं रहा है कि बहू कहां है, बच्चे कहां है, जाओ जाओ गाड़ी लेकर के जाओ कहां पर है। अरे ये तो हक्का बक्का है कि ये बुजुर्ग बार क्या मेरे परिचित हैं, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं। वो हाथ जोड़ के कहता है कि सब लोग आए हुए हैं लेकिन अभी मुझे और कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक गिलास दूध चाहिए। हाँ हाँ चाहिए तुम्हें एक गिलास दूध चाहिए, अकेली तुम अपनी चिंता करते हो, चलो बैठो यहां पर। और कहां है बहू, कहां पर है और बच्चे कहां है, और सामान सामान वहां पर धर्मशाला में रखने का था, मेरा घर होते हुए भी मुझे पराया मान रखा है क्या। अब तो कहते ही चले जा रहे हैं वो, और नहीं माने, बहुत हाथ पैर जोड़े कि नहीं बस आप तो एक दूध दे दीजिएगा, बहुत तकलीफ है दवाई खाने के लिए, बहुत मुश्किल में। और अपने बेटे से वहां दूध भेजा, साथ में इस व्यक्ति को भेजा, सामान उठवा करके सबको ला करके अपने घर में जगह दी। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं, इंदौर की नई दुनिया में धड़कन नाम के कॉलम में निकलती आस्था, जो पढ़ते हुए जानते होंगे, उसमें से पढ़ी थी मैंने और कहीं से नहीं लाया मैं। और उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने तीर्थ यात्रा वास्तव में करने का आनंद उस क्षण में लिया, मैंने भगवान के दर्शन उस व्यक्ति के अंदर किए हैं, लोग पता नहीं किस मूर्ति में कौन से भगवान के दर्शन करते हैं, मैंने उस व्यक्ति के जीवन में खुद अनुभव किया है। व्यक्ति को देख करके अरे कहा नहीं तुमने कि तुम आने वाले हो, अरे पहले तो खबर दे देते मुझे, और इतनी रात हो गई और बहू कहां है, बा भाई बच्चों को लाए हो कि नहीं इस बार, अपरिचित व्यक्ति से कह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा ढीला होगा उसका, नहीं क्या लग रहा है आपको, यही लग रहा होगा और क्या लग सकता है, इससे ज्यादा क्या लग सकता है कि ऐसा ही होगा, कोई ऐसा तो ही होता है क्या संसार में, ये कहां की घटना सुना रहे महाराज जी, ठीक ठीक आदमी होगा ऐसा लग ही नहीं सकता कि जो एक अपरिचित व्यक्ति से इस तरह बोल रहा है कि पहले सूचना देकर के आ जाते और बहू को लाए कि नहीं, बच्चे हैं कहां हैं। वो अपनी बात कुछ कह ही नहीं पाया कि मैं दूध ढूंढने के लिए निकला हूं कि कहीं एक पाव दूध मिल जाए, और इसके पहले ही बुजुर्ग बार इतना सब कह चुके और ये कह रहे हैं कि बाहर ही खड़े रहोगे क्या, अरे बैठो आओ अंदर बैठो। और अपने बेटे को आवाज देता है कि देखो तो इतना बड़ा हो गया है और मुझे बिना खबर दिए हुए और आ गया और बता भी नहीं रहा है कि बहू कहां है, बच्चे कहां है, जाओ जाओ गाड़ी लेकर के जाओ कहां पर है। अरे ये तो हक्का बक्का है कि ये बुजुर्ग बार क्या मेरे परिचित हैं, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं। वो हाथ जोड़ के कहता है कि सब लोग आए हुए हैं लेकिन अभी मुझे और कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक गिलास दूध चाहिए। हाँ हाँ चाहिए तुम्हें एक गिलास दूध चाहिए, अकेली तुम अपनी चिंता करते हो, चलो बैठो यहां पर। और कहां है बहू, कहां पर है और बच्चे कहां है, और सामान सामान वहां पर धर्मशाला में रखने का था, मेरा घर होते हुए भी मुझे पराया मान रखा है क्या। अब तो कहते ही चले जा रहे हैं वो, और नहीं माने, बहुत हाथ पैर जोड़े कि नहीं बस आप तो एक दूध दे दीजिएगा, बहुत तकलीफ है दवाई खाने के लिए, बहुत मुश्किल में। और अपने बेटे से वहां दूध भेजा, साथ में इस व्यक्ति को भेजा, सामान उठवा करके सबको ला करके अपने घर में जगह दी। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं, इंदौर की नई दुनिया में धड़कन नाम के कॉलम में निकलती आस्था, जो पढ़ते हुए जानते होंगे, उसमें से पढ़ी थी मैंने और कहीं से नहीं लाया मैं। और उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने तीर्थ यात्रा वास्तव में करने का आनंद उस क्षण में लिया, मैंने भगवान के दर्शन उस व्यक्ति के अंदर किए हैं, लोग पता नहीं किस मूर्ति में कौन से भगवान के दर्शन करते हैं, मैंने उस व्यक्ति के जीवन में खुद अनुभव किया है। बताइएगा हमारा अपना सोच आज किस तरह का हो गया। और एक ये सोच है कि हम क्षण भर के अंदर बाहर किसी चैतन्य व्यक्ति को देख करके और झट से उसकी चेतना का सम्मान करते हैं, जहां रिवरेंस ऑफ लाइफ है, मानिएगा कि वहां पर है प्रेम का संबंध, दया और करुणा का संबंध। अभी तो हम अपनी चेतना का सम्मान चाहते हैं, लेकिन जहां जहां चेतना धड़कती है, उस सबके सम्मान की भावना हमारे मन में कहां है? कहां है हमारे मन में ऐसा संबंध स्थापित करने की भावना? हो सकता है कि आप ये कहें, क्योंकि इस तरह की बात कहने के बाद मेरे पास प्रश्न आते हैं कि महाराज आप तो संबंधों की बात कर रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि संसार से पार होने के लिए संबंध ही छोड़ना पड़ेंगे, आप भी सबरे संबंध छोड़ के आए और हमें संबंधों की बात बता रहे हैं। जी तो संसार की बात बता रहे हैं आप। हाँ, ऐसा आपको लग सकता है और मेरे पास हो सकता है कि अगले दिन प्रश्न भी आ जाए, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। जबकि हम सुबह से शाम तक इन्हीं संबंधों में जीते हैं। अभी तो मैंने ये नहीं कहा कि देह से मेरा कौन सा संबंध है, अपनी ही नहीं दूसरे की देह से भी मेरा कौन सा संबंध है, अभी तो इस पर एनालिसिस नहीं है, कभी करूंगा, इस पर भी करूंगा। अभी तो सिर्फ वस्तु और व्यक्ति से संबंध जो हमने बना रखे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि हमारी चेतना कैसी है। और आखिरी इस संसार से पार होने का संबंध है, वो है अपने पूज्य पुरुषों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का संबंध। हो सके तो घृणा और द्वेष के संबंधों में कमी ला करके सबसे प्रेम और करुणा का संबंध हम निर्मित करें। एक बहन जापान गई थी अपने स्टडी के लिए, मेरे से आशीर्वाद लेके गई थी, और मैं आपसे कह दूं कि वो कोई जैन बेटी नहीं थी। हाँ, ये नहीं समझना कि वो जैन ही थी, लेकिन उसकी श्रद्धा, जाते समय आशीर्वाद देके गई, लौट करके डेढ़ साल बाद सबसे पहले अपने घर आने के बाद उसने कहा कि गुरुजी के पास जाऊं। ठीक है, मेरे पास आकर के जब सारा कुछ उसने बताया कि ऐसा है वहां, ऐसा है वहां, बहुत प्रशंसा की, रात 12 बजे भी किसी के दरवाजे पे नॉक करो तो सबसे पहले वो पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और अगर अपन ये कहें कि फलानी जगह जाना है तो ये नहीं कहता कि ऐसे ऐसे चले जाना, वो कहता थोड़ा ठहरो मैं आता हूँ और जल्दी से तैयार होकर आपके साथ आपको भेज के आएगा। इतना मैनर है वहां पर, ये सब चीज तो बहुत अच्छी है। बाजू में एक कोई टाइपिस्ट लेडी थी बाजू के कमरे में, तो वो एक दिन आकर के बोलती हैं कि मैं अपने टाइम टाइपिंग के चेंज कर लूं अगर मेरी टाइपिंग से आपको कोई असुविधा होती हो, क्योंकि आप मेरे देश में मेहमान बन के आई हुई है। वो इतना केयर करते हैं, सब कुछ है। मैंने कहा तब तो बहुत अच्छा शहर, बहुत अच्छा देश है, तो फिर यहां वापिस काहे को आ गए बेटे, मैंने सीधा पूछा, वहां तो बहुत अच्छा था फिर तो। बोलती नहीं, वहां सब कुछ है, वहां सब एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वहां हम किसी को अपना नहीं कह सकते हैं, वहां पर कोई आत्मीयता नहीं है, वहां सब एक दूसरे का उपयोग करते हैं, सब एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन कोई किसी का अपना नहीं है। वो जो एक आत्मीयता है, वो जो एक परस्पर एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनने का भाव है, वो नहीं है वहां पर, वो संबंध वहां नहीं है। ये हमारी अपनी विशेषता है, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति की, यहां हम आत्मीयता के और अच्छे संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के कल्याण में कारण बनते हैं। इस चीज को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वो जो श्रद्धा और भक्ति के संबंध है वो तो बहुत थोड़े से हैं, वो तो मंदिर तक ही सीमित है, वो तो मेरा एक घंटे का जॉब है, वो हाँ वो एक जॉब है मेरा, एक घंटे का पार्ट टाइम जॉब है मेरा, वो मैं आता हूँ और भगवान के सामने और गा करके बजा करके और खूब भक्ति भाव अपना प्रदर्शित करता हूँ, लगता तो है जैसे कि मेरी भक्ति बहुत है, मेरी श्रद्धा भगवान के प्रति बहुत है, लेकिन ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। ये श्रद्धा और भक्ति वो तो जब मालूम पड़ती है जब मैं दुकान पे बैठा रहता हूं और जब मेरी अंतरात्मा की आवाज बेईमानी नहीं करने के लिए कहती और मैं उसे दबा करके कहता हूं कि यहां ऐसे नहीं चलेगा, वो मंदिर नहीं है, ये दुकान है, तब मालूम पड़ता है कि मैं मेरी कितनी श्रद्धा है, मेरी कितनी भक्ति है। ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा? आप कहेंगे तो मैं इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा, आपको 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 खुश करने वाली बात, अभी तो आप खुश नहीं हो रहे मेरे से, आपको लग रहा है कि क्या क्या कर रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, ये तो बिल्कुल जी कैसे पाएंगे, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति कहने लगे कि महाराज ये सब बातें कहने सुनने में प्रवचन तक अच्छी लगती, फिर जीवन में तो अच्छी नहीं लगती। वो बिल्कुल ये स्थिति हम लोगों के साथ, हम लोग सब जानते समझते हैं पर हमारा अपना जीवन किस तरह बीत रहा है इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना और शुरू कर दें। क्या वो जो मंदिर की श्रद्धा और भक्ति है वो मेरे जीवन में आ पा रही है? मेरे अपने रोजमर्रा के जीवन में उसका कोई जरा भी फैलाव मुझे दिखाई पड़ता है? ये तो कोई विरले ही लोग होते हैं, जैसे कि विनोबा जैसे लोग जो अपने कमरे में झाड़ू लगाते समय पूछने पर कि क्या कर रहे हो, कहते भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं। अजीब आदमी हो, झाड़ू लगा रहे और कह रहे भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ, भगवान ने यही तो कहा है कि जैसे मैं अपने कमरे का कचरा पसंद नहीं करता और उसे झाड़ कर बाहर फेंकता हूं, ऐसे ही मुझे अपने मन के द्वेष, ईर्षा, क्रोध, कषाय, मिथ्यात्व, ये सब जितनी कचरे हैं इनको लिखा के बाहर फेंकना, यही तो भगवान ने कहा, इसलिए मैं वो ही करता रहता हूं। ये कचरा निकालने में मुझे किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा कमरा झाड़ने के लिए एक ट्यून वो लाओ, स्वीपर लाओ, मैं अपने हाथ से कर लेता हूं। मैं ये मान के करता हूं कि जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना करने का मेरा ढंग इस तरह का है। आपका प्रार्थना करने का यही ढंग की घंटी बजाई, जलधारा करी, जय 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 नाथ परम गुरु होए, हाँ बस, और फिर बाद में बाहर निकले तो फिर तो सब शुरू हुए, जो भी चलता संसार में, आप परम गुरु हुए वो उधर के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना अलग अलग जीवन नहीं होना चाहिए, इतना खंडित तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो उसका मैनिफेस्टेशन, कुछ तो उसका फैलाव मेरे जीवन में भी, विस्तार उसमें भी दिखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, और कोई बहुत विशेष बात नहीं कहना चाहिए। वो जो श्रद्धा और भक्ति का मेरा संबंध है वो बहुत ऊंचा संबंध है, वो मुझे संसार से पार करने वाला संबंध है, वो मुझे निर्मित करना था, वो भी मैंने इस तरह से बहुत सुपरफिशियल, बहुत सतही स्थापित किया है श्रद्धा और भक्ति का, और वो भी कितने घंटे भर के लिए, जब जब मैं भगवान के सामने होता हूं तब तब भगवान को मैं हमेशा अपने सामने रखूं अगर मेरी श्रद्धा और भक्ति है, और जब जब वो मेरे सामने रहेंगे तो फिर मैं बेईमानी कर ही नहीं पाऊंगा, फिर मैं कहीं भी किसी भी अवस्था में रहूं अगर मेरा श्रद्धा और भक्ति का संबंध है जिसके प्रति है, तो वो 24 घंटे मेरी आंख के सामने है। जैसे कि किसी बेटे से पूछा जाए कि मां की याद आती है क्या, तो वो कहेगा भूलते ही कब हूं, जो अलग से याद करना पड़े मुझे, याद ही उन्हीं की बनी रहती और किसी की आती नहीं। क्या ऐसा है भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा और भक्ति का भाव? एक छोटी सी घटना हो जाएगी, 10 मिनट में हो जाएगी, आप 10 बजे तक करेंगे अपन, है ना, 9:45 से 10 कर लेते हैं, 15 मिनट, संडे है, हाँ, उसको क्या आप करनी पड़ेगा, एडजस्ट करनी पड़ेगा, वो कहानी 10 मिनट तो लगेंगे उसमें। क्या हुआ, एक जहाज, पानी का जहाज एक द्वीप के किनारे रुका, बहुत लंबी यात्रा हो गई थी, सामने द्वीप दिखाई पड़ा, आइसलैंड टापू भी कहते हैं अपन, वहां उन्होंने उसको रोका। देखें यहां कुछ मिलता है अपने लिए कि नहीं मिलता है, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा फिर आगे चलेंगे। उतरते ही साथ उन्हें दिखा कि और तो कुछ नहीं है लेकिन एक मंदिर दिख रहा है, बहुत पुराना सा जीर्ण शीर्ण, चल के देखना चाहिए। तो उसमें जो पंडित नुमा या पुरोहित जैसे पुजारी जैसे लोग थे उनको तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मंदिर दिखते ही साथ। हाँ, होता है इस तरह का, इसमें होना ही चाहिए। मैंने पंडित नुमा शब्द कहा तो बुरा तो नहीं लगा आपको, क्योंकि पंडित होना बहुत कठिन है, पंडित नुमा होना बहुत आसान है, विद्वान होना बहुत आसान नहीं है, विद्वान नुमा होना तो बहुत आसान है। हो जाते हैं अपन थोड़ी सी दो चार बातें पढ़ करके। तो इसलिए ये शब्द मुझे अच्छा लगता है कि पंडित नुमा, जैसे कि हम सब मनुष्य नुमा प्राणी हैं। हाँ, मनुष्यता नहीं हो तो मनुष्य नुमा ही कहना पड़ेगा, और क्या कहेंगे बताइए, आप ही बताइए। अब उनको बड़ा इंटरेस्ट कि मंदिर है, चलते हैं देखें। तो वहां जाकर के देखा तो तीन संत पुरुष जैसे दिख रहे थे। इनको लगा कि लगता है ये हमसे भी ज्यादा जानकार है, और अपने से ज्यादा जानकार कोई दिख जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। फिर तो ये लगता है कि जरा इनकी परीक्षा करके देखूं क्या क्या आता है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो वो किसी से बताएं कि हम ये पढ़ रहे हैं तो मालूम वो क्या करेगा सबसे पहले, अच्छा ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी है, और फिर बाद में आप बता नहीं पाएंगे तो भीतर ही भीतर मजा लेगा, अरे जानता वनता कुछ नहीं है, डिग्री जरूर है इसके पास, बाकी अपन तो ठीक है। बहुत बहुत आज तो मेरा वो पूरे मन से बैठा हूं मैं, बहुत एनालिसिस कर रहा हूं आज तो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, एक एक चीज। अब वो क्या हुआ कि उसमें से उन्होंने देखा कि ये लग तो बहुत बड़े से रहे हैं, लेकिन बड़ा कैसे मान लूं सहसा। तो पूछा कि क्या करते हो तुम लोग, तो इन पंडितों को देख करके वो तीनों भोले भाले प्राणी थोड़े से घबराए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम तो यहां भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं। अच्छा, पूजा प्रार्थना करते हो, क्या है तुम्हारी पूजा करने का ढंग, कैसी पूजा करते हो, कौन सी स्तुति पढ़ते हो, स्टैंड राइज कोई तुम्हें प्रार्थना याद है? उन्होंने कहा स्टैंड राइज कोई प्रार्थना वो तो नहीं है याद। तब फिर इनको बड़ी राहत मिली कि हम अभी विद्वान ज्यों के त्यों हैं। हाँ, ये कुछ नहीं जानते, सब बुद्धू हैं। हाँ, उन्होंने कहा बैठो हम बताते हैं। अब वो सब भूल गए कि क्या क्या देखना था इस टापू के अंदर, ये मिल गए तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता, हमको तो वैसे कोई प्रार्थना वाला, तो करते क्या हो तुम? तो उन्होंने कहा बस आप देख रहे हैं इस खंडहर में जब हम आए तो कोई नहीं था, ये तीनों मूर्तियां जो सामने हैं वो ही थी, हमको प्रार्थना आती नहीं है, हम अज्ञानी हैं, तो हम लोगों ने अपने आप ही एक प्रार्थना बना ली। क्या प्रार्थना बनाई तुम लोगों ने? यही कि यू आर 3 वी आर 3, हैव मर्सी विद अस, आप भी तीन हैं हम भी तीन हैं, हम पर दया बनाए रखना। अब इससे ज्यादा क्या हो? उन्होंने कहा सब गलत, ये कोई प्रार्थना होती है क्या? तो उन्होंने कहा कि आप विद्वान हैं, आप हमें बता दें कि प्रार्थना कैसे की जाती, हम सीख लेंगे आपसे, पर हमारी श्रद्धा है भगवान में तो हमसे जो बनता है टूटा फूटा वो हम करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होती प्रार्थना, ऐसे नहीं व्यक्त की जाती श्रद्धा, हम बताते हैं। और उन्होंने एक लंबी सारी प्रार्थना, सकल गे गायक तदपि निजानंदर स्लीन, वो वाली, या कि और भी बड़ी वाली जो भी हो, जो भी स्टैंड राइज होगी, वो उन्होंने उनको वो सिखा दी पूरी। अब वो बेचारे भोले भाले प्राणी, उन्होंने एक बार सुनी कहां याद रहने वाली, फिर से बता दीजिएगा। फिर हाथ जोड़ करके नीचे तो बैठी है वो पैरों में उनके तीनों, और आप फिर से बता दीजिएगा। फिर बता दी, अब याद रह जाएगी। ठीक है, जो बनी उनसे सेवा वो सब जहाज के लोगों के की। सबको विदा करने गए नदी के किनारे तक, उनको छोड़ने गए वो तीनों भोले भाले भक्त श्रद्धालु थे वो तो। और जहाज जाने लगा, दूर तक जहाज चला गया समुद्र के भीतर। अचानक उस जहाज में से इन लोगों को ऐसा दिखाई पड़ा कि अरे ये कौन सी चीज चली आ रही है, बिल्कुल तीन जुगनू की तरह, स्टार की तरह कुछ चीजें चली आ रही हैं। तो ये सब घबराए कि कोई विपत्ति तो नहीं है, सब अलर्ट हो गए। पंडित जी नुमा जो लोग थे उनने जल्दी से अपनी माला वाला निकाली, जपना शुरू कर दिया कि कोई विपत्ति आने वाली है। हाँ ऐसे होता है, भले ही भीतर में श्रद्धा ना हो लेकिन फिरना तो लिखा है उसमें कि जाप फिरना चाहिए, उसमें क्या बात है, जब विपत्ति आए तब। बाकी नहीं, बाकी सुख के समय पर तो जितना एंजॉय करना उतना एंजॉय करो। भगवान जी को तो अपन कह के आते हैं कि देखो हमारे साथ में मत आना, वहीं पर वो सतर्क वहीं ताला वाला लगा करके, संगे आओगे तो बहुत परेशानी पड़ोगे, यहां तो हम बहुत मुश्किल दुकान में कहां इतनी भीड़ में आप। साथ
Ooh.
धम्मं शरणं पौरज्ञां।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।